30 अगस्त दिन मंगलवार दिन भर मैं हूं रेहान फदल। एनआईए ने अलगाववादी नेता सैयद अली शाह गिलानी के बेटे नईम गिलानी को पूछताछ के लिए तलब किया।
बिकॉज ऑफ माई फादर उनको हैरस करने के लिए, मिलाइन करने के लिए दे कुक दी स्टोरीज।
अमरीकी विदेश मंत्री जॉन कैरी ने संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया और मशहूर गीतकार शैलेंद्र की जयंती पर बात करेंगे उनकी बेटी अमला शैलेंद्र से।
अगर ग्लोबलाइजेशन हुआ है हिंदी फिल्मों का, हिंदी फिल्म के गानों का, तो बाबा के ये दो तीन गाने हैं, आवारा हूँ और मेरा जूता है जापानी, इट इज अनबिलीवेबल।
लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार सुशीला सिंह से। भारत प्रशासित कश्मीर के अलगाववादी नेता सैयद अली शाह गिलानी के बड़े बेटे नईम शाह गिलानी को उनके बैंक खातों के सिलसिले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए ने पूछताछ के लिए बुलाया है। एनआईए ने हुर्रियत नेता गिलानी के बेटे को उनके बैंक खातों में कथित रूप से विदेश से आए फंड के बारे में पूछताछ के लिए बुलाया है। इस बीच नईम गिलानी ने एनआईए के बुलावे पर हैरानी जताते हुए कहा कि वे तो सियासी आदमी नहीं है बल्कि एक डॉक्टर हैं, फिर उन्हें क्यों बुलाया गया है। अमरीका के विदेश मंत्री जॉन कैरी से मुलाकात के बाद भारतीय विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कहा कि दोनों देशों ने रक्षा चरमपंथ को रोकने और साइबर सुरक्षा में सहयोग किया है। उन्होंने कहा कि आतंकवाद अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए अहम चुनौती है और आतंकवाद निरोधक क्षेत्र में बहुत कुछ और करने का स्कोप अभी है। दोनों देशों के बीच व्यापारिक सहयोग के बारे में सुषमा स्वराज ने कहा कि भारत को अपनी कंपनियों के हितों का ख्याल रखना चाहिए। जॉन कैरी का कहना था,
and we look forward to finalizing a cyber framework that will help us all to...
दोनों देशों की सेना और नौसेना साझा अभ्यास करती हैं और उसका दायरा बढ़ रहा है। साथ ही वैश्विक सुरक्षा को लेकर जो नए खतरे पेश आ रहे हैं उन्हें देखते हुए साइबर फ्रेमवर्क तैयार किया जा रहा है। ये थे अमेरिका के विदेश मंत्री जॉन कैरी के शब्द। यूरोपीय आयोग ने फैसला दिया है कि आयरलैंड एप्पल से 13 अरब यूरो टैक्स की वसूली करे। 3 साल की गहन जांच के बाद यूरोपीय आयोग ने फैसला दिया है कि एप्पल को जो टैक्स नियमों के तहत फायदे मिले थे वो अवैध हैं। आयोग के अनुसार इस डील के तहत एप्पल को बाकी बिजनेस कंपनियों की तुलना में अधिक फायदा मिला और उसने मात्र 1% का कॉरपोरेट टैक्स अदा किया। आयरलैंड के वित्त मंत्री माइकल नूनान ने कहा कि वो इस फैसले से पूर्ण रूप से असहमत हैं। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। सोमालिया की राजधानी मोगादिशु के केंद्र में स्थित एक होटल के बाहर एक बम धमाका हुआ है। ये बम एक ट्रक में रखा हुआ था। ये होटल राष्ट्रपति भवन के गेट के नज़दीक पड़ता है। एक प्रत्यक्षदर्शी ने बीबीसी को बताया कि इस हमले में कम से कम 10 लोग मारे गए हैं। इस्लामी समूह अल शबाब ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। वहीं शहर के मुख्य अस्पताल से में इस हमले में घायल हुए 22 लोगों का इलाज चल रहा है। हमले में घायल हुए लोगों में राजनीतिज्ञ और पत्रकार शामिल हैं। स्थानीय मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक SYL होटल में एक सुरक्षा के मामले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी। जापान के उत्तर पूर्वी तट पर आए तूफान की वजह से लाखों लोगों को अपने घर छोड़ने पड़े हैं। साल 2011 में आई सुनामी से उबर रहे लोगों का अब इस लायन रॉक तूफान ने जीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। ट्रेन और विमान सेवाएं रद्द कर दी गई हैं। बीबीसी समाचार।
दिन भर में अभिवादन स्वीकार करिए रेहान फदल का। शुरुआत करते हैं कश्मीर से। भारत प्रशासित कश्मीर के अलगाववादी नेता सैयद अली शाह गिलानी के बड़े बेटे नईम शाह गिलानी को उनके बैंक खातों के सिलसिले में एनआईए ने पूछताछ के लिए बुलाया है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने हुर्रियत नेता गिलानी के बेटे को उनके बैंक खातों में कथित रूप से विदेश से आए फंड के बारे में पूछताछ के लिए बुलाया है। इसकी पुष्टि करते हुए नईम गिलानी ने बीबीसी को बताया कि उन्हें एनआईए का समन सोमवार को मिला। उन्होंने कहा कि वो मंगलवार को एनआईए के दफ्तर जाएंगे। जुबैर अहमद की रिपोर्ट।
नईम गिलानी ने कहा कि उन्हें एनआईए से बुलावे पर बड़ी हैरानी हुई है। उन्होंने कहा, मैं तो सियासी आदमी हूँ भी नहीं, मैं तो एक डॉक्टर हूँ, फिर मुझे क्यों बुलाया जा रहा है। खबरों के मुताबिक एनआईए उनसे उनके बैंक खातों में आए कथित विदेशी पैसों के बारे में पूछना चाहती है। सरकार दावा करती है कि कश्मीर में पत्थर फेंकने वालों को विदेशी पैसे दिए जाते हैं। नईम गिलानी से मैंने पूछा, अभी आपके पास एक अकाउंट है?
जी जी, एक अकाउंट है।
अच्छा, और उसमें कोई ओवरसीज से आपके पास फंड वगैरह नहीं है?
नहीं नहीं, नथिंग नथिंग, उसमें है 31,000, दैट आई रिमेम्बर, सो दैट्स ऑल।
नईम गिलानी दावा करते हैं कि भारत सरकार उनके पिता के इरादों को कमजोर करने के लिए ऐसे हरबे इस्तेमाल कर रही है।
नहीं, ये एक्चुअली बिकॉज ऑफ माई फादर, उनको हैरस करने के लिए, मिलाइन करने के लिए, दे कुक दी स्टोरीज, तो ये इससे पहले भी कर चुके हैं, ऐसे बहुत सारे केसेस, फैब्रिकेट केसेस बना रहे हैं ये।
हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के प्रवक्ता और सैयद गिलानी के दामाद अल्ताफ अहमद शाह ने बीबीसी से कहा कि गिलानी साहब इस तरह के दबाव में आने वाले नहीं। उन्होंने भारत सरकार की बात करते हुए कहा,
लेकिन इसमें एक और मकसद ये भी है ना, ये आप देख लीजिए, कलमपट्टी पे बंदूक रख के गिलानी साहब को कह रहे हैं कि आप नरम लहजा इख्तियार कीजिए, आप अपने मौकफ से दस्तबरदार हो जाइए, आप अपने मौकफ में नरमी लाइए, लचक लाइए, और ये जैसे कि बंदूक रखा है कलमपट्टी पे, तो ये वही है। एक तरफ से ये कहते हैं हम ऑल पार्टी डेलीगेशन भेज रहे हैं, एक तरफ से कहते हैं कि हम बातचीत करेंगे इनसे।
तो आपको क्या मिक्स्ड मैसेजेस मिल रहे हैं दिल्ली से?
मिक्स्ड, तो ऐसी हालत में कौन इनसे बात करेगा, ऐसी हालत में कैसे गन पॉइंट पे कोई कहलवा रहे हैं ये।
कश्मीर में 8 जुलाई को हिजबुल मुजाहिदीन के कथित कमांडर बुरहान वानी की पुलिस मुठभेड़ में हुई मौत के बाद से प्रदर्शन और हिंसा जारी है। इसमें अब तक 65 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं और सैकड़ों सुरक्षा कर्मियों समेत कई घायल हुए हैं। इनमें से दर्जनों की पैलेट गन से चोट लगने के कारण आंखों की रोशनी चली गई है। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने उस समय से जो आम हड़ताल बुलाई थी वो आज भी जारी है। हुर्रियत नेता सैयद अली शाह गिलानी समेत पार्टी के सभी बड़े नेता अपने घरों में नजरबंद हैं। अल्ताफ शाह कहते हैं कि हुर्रियत कॉन्फ्रेंस बातचीत करना चाहती है, लेकिन भारत सरकार की संविधान के दायरे में रहकर बातचीत की शर्त उन्हें मंजूर नहीं। नईम गिलानी पाकिस्तान में 8 साल रहने के बाद 2010 में श्रीनगर वापस लौटे। उन्होंने बताया कि वो इख्वान यानी आत्मसमर्पण करने वाले चरमपंथियों के हमलों के डर से पाकिस्तान गए थे। मैंने पूछा, पाकिस्तान में 8 सालों तक आपने क्या किया? इस सवाल पर वो बोले, मैंने वहाँ डॉक्टरी की पढ़ाई की और कुछ साल डॉक्टर की हैसियत से काम भी किया। नईम गिलानी आजकल श्रीनगर के एक सरकारी अस्पताल में काम करते हैं। जुबैर अहमद, बीबीसी दिल्ली।
उधर कश्मीर से इस तरह की खबरें आ रही हैं कि वहां करीब 2,500 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। थोड़ी देर पहले मैंने श्रीनगर फोन कर रियाज मसरूर से संपर्क किया और पूछा कि नईम गिलानी को एनआईए द्वारा तलब किए जाने पर क्या प्रतिक्रियाएं आई हैं।
जाहिर है नईम गिलानी को ही नहीं बल्कि कई लोगों की लिस्ट बनाई गई है। एनआईए की टीम जो है जब से नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी बनी है उसके तुरंत बाद ही कश्मीर में उनका एक ऑफिस भी स्थापित किया गया था। तो नईम गिलानी डॉक्टर हैं पेशे से, वो सईद अली गिलानी जो अलगाववादी नेता हैं उनके बेटे हैं, और सईद अली गिलानी के जो साथी हैं उनकी अपनी तंजीम तहरीक हुर्रियत में पीर सैफुल्ला, उनका भी इन्वेस्टिगेशन किया गया। लेकिन एनआईए का कहना है कि इन्वेस्टिगेशन के बाद उनके विरुद्ध जो आरोप थे वो साबित नहीं हो पाए। लेकिन नईम गिलानी को तलब किया गया है, इस पर सईद अली गिलानी ने बहुत जबरदस्त रिएक्शन दिया है। उन्होंने कहा है कि ये जो एनआईए का इन्वेस्टिगेशन है एक्चुअली इसका मकसद जो है वो ये है कि यहाँ जो आंदोलन चल रहा है प्लेबिसिट के लिए, उस आंदोलन को कमजोर किया जाए। और एनआईए ने साथ ही कई बैंक अकाउंट की तफ्तीश भी शुरू कर दी है, और यहाँ का जो लोकल बैंक है जेएनके बैंक और जो दूसरे बैंक है यहाँ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी या आईसीआईसीआई, तो उन बैंक में जो खाते हैं, जो संदिग्ध खाते हैं, तो उन खातों की भी खास तौर से छान फटक की जा रही है, कागजात को देखा जा रहा है। और शक एनआईए को ये है कि यहाँ जो अनरेस्ट चल रहा है, ये जो अस्थिरता फैली हुई है, इसको फैलाने के लिए कुछ लोगों को सरहद पार से जो है वो अवैध रूप से फंड ट्रांसफर किए गए।
इस तरह की भी खबरें हैं कि करीब 2,500 लोगों की गिरफ्तारी हुई है।
जी, गिरफ्तारी का सिलसिला तो 21 जुलाई से ही शुरू हो गया था, क्योंकि पुलिस का कहना है कि जो लोग पत्थर मारते हैं या जो लोग हिंसा को मोबिलाइज करते हैं वो लोग पहले से इन चीजों में वांटेड हैं, तो उनकी गिरफ्तारी का सिलसिला शुरू किया गया है। और ये रात में अक्सर होता है, जो दक्षिणी और उत्तरी कश्मीर के कई इलाकों में प्रदर्शन भी हुए इसके खिलाफ, रात में पुलिस की काटी जाती है और जो उनके पास लिस्ट है उनको गिरफ्तार किया जाता है। और पुलिस ने आज स्पष्ट कर लिया कि उनकी संख्या जो है गिरफ्तार होने वालों की उनकी संख्या 2500 के करीब पहुंच गई है। और इस बीच अलगाववादियों का तो आपको मालूम है कि उनको पहले से ही हाउस अरेस्ट रखा जाता था, लेकिन ये पहला मौका है कि सईद अली गिलानी को भी एक पुलिस के गेस्ट हाउस में रखा गया है। और मीरवाइज उमर फारूक के बारे में सरकार ये नहीं बता पा रही है कि वो कहाँ है, लेकिन पुलिस का कहना है कि चश्मा शाही जो एक टूरिस्ट रिजॉर्ट है एक्चुअली, तो हुकूमत ने क्या किया है उसको एक सब जेल में कॉन्वर्ट किया है, क्योंकि 2010 में भी जब यहाँ आंदोलन चल रहा था तो उस वक्त वहाँ गिलानी साहब को रखा गया था, तो इस बार वहाँ मीरवाइज उमर फारूक को रखा गया है। तो इसी तरह से यासीन मलिक हैं, उनको तो बहुत पहले से जेल में रखा गया है और ये खबरें भी आ रही हैं कि उनको इलाज के सिलसिले में दिल्ली ले जाया गया है कि वो सबसे बात करेंगे, नाराज लोगों से भी बात करेंगे, अलगाववादियों से भी बात करेंगे और उसकी अध्यक्षता खुद गृहमंत्री राजनाथ सिंह करेंगे। उसमें खासतौर से जो पूर्व वित्त मंत्री या पूर्व गृहमंत्री हैं पी चिदम्बरम और उनके साथ सीताराम येचुरी हैं और दूसरे अन्य नेता हैं, सभी मतलब एक सर्वदलीय डेलीगेशन होगा जो यहाँ आएगा। तो इस पर काफी नजरें लोगों की हैं कि उनका स्टैंड क्या होगा, वो किस तरह से बात करेंगे।
ये थे श्रीनगर से रियाज मसरूर।
75 वर्षों से आपके साथ
बीबीसी हिंदी रेडियो,
सुनिए अपने मोबाइल पर
और ऑनलाइन भी।
भारत और अमेरिका के बीच दिल्ली से लेकर वॉशिंगटन तक वार्ताओं का दौर चल रहा है, जहां भारतीय रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर अमेरिका के दौरे पर हैं, वहीं अमेरिकी विदेश मंत्री जॉन कैरी भारत आए हुए हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री भारत अमेरिका रणनीतिक व वाणिज्यिक वार्ता के दूसरे दौर में शामिल हुए। कैरी के अलावा अमेरिका की वाणिज्य मंत्री पेनी पिट्सकर भी इस बातचीत में शामिल हुई। थोड़ी देर पहले विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और जॉन कैरी ने एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया है। इस समय हमारे साथ हैं बीबीसी संवाददाता सलमान रावी। सलमान, बताएं क्या कुछ कहा इन दोनों ने।
देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये आज जो बैठकें हुई हैं वो अलग अलग तौर पे हुई हैं। एक बैठक जिसमें दोनों विदेश मंत्री शामिल थे और दूसरी बैठक जिसमें वाणिज्य मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ उनकी समकक्ष पेनी पिट्सकर जो है वो शामिल थी। और ये जो दूसरी बैठक थी जिसको कहा जाता है कि अमरीका सामरिक और वाणिज्यिक वार्ता, तो इसमें सीईओ फोरम की जो है ये बैठक थी जिसमें टाटा सन्स के अध्यक्ष भी शामिल थे और बड़े कंपनियों के अमेरिकी कंपनियों के सीईओज भी शामिल थे। लेकिन जो साझा बयान जारी हुआ से कुछ देर पहले, उसमें जाहिर सी बात है कि सब ये उम्मीद लगा रहे थे कि सुरक्षा, आतंकवाद और इन सब चीज़ों पर बातचीत हुई होगी और बिल्कुल वैसे ही हुआ। सुषमा स्वराज ने अपने बयान में कहा,
भारत और हमारे क्षेत्र के एक बड़े भूभाग में पाकिस्तान की ओर से सीमा पार आतंकवाद की लगातार बनी हुई समस्या से मैंने सेक्रेटरी कैरी को अवगत कराया। हम दोनों इस बात पर सहमत थे कि किसी भी राष्ट्र को आतंकवाद पर दोहरे मानदंड नहीं अपनाने चाहिए, जैसे अच्छा या बुरा कहकर आतंकवादियों में अंतर करना और ना ही उन्हें आतंकवादी संगठनों के लिए सुरक्षित शरणस्थली बनना चाहिए। हम इस बात को हमने एक बार फिर दोहराया कि पाकिस्तान के लिए यह आवश्यक है कि वो अपने यहाँ आतंकवादियों और आपराधिक नेटवर्कों जैसे कि लश्करे तैयबा, जैश ए मोहम्मद और डी कंपनी के लिए शरणस्थली को खत्म करे।
तो जाहिर सी बात है कि सुषमा स्वराज का बयान आपने सुन ही लिया, लेकिन उसी टोन में रिस्पॉन्ड किया जॉन कैरी ने और उन्होंने कहा कि वो यूएस जो है अमरीका बिल्कुल साथ है भारत के और मुंबई और पठानकोट के जो हमले हुए हैं उसके जो दोषी हैं उनको जस्टिस यानी कि उनको सजा मिलनी चाहिए, जॉन कैरी का कहना था।
मोर ब्रॉडली वी रिइटरेटेड आवर अनवेवरिंग कमिटमेंट टू द प्रोटेक्शन ऑफ आवर सिटीजंस एंड टू डिफीटिंग द टेररिस्ट मैंट्रा ऑफ बिगटरी एंड ऑफ हेट। नाउ लेट मी बी क्लियर,
वो अपने देश का समर्थन दे रहे थे भारत को कि जिस तरह से भारत डील कर रहा है इस वक्त जो आतंकवाद से संबंधित जो घटनाएं हैं उसको लेकर, और जो अगर ब्रॉडर तरीके से अगर इस पूरी बैठक को अगर देखा जाए तो उसमें बहुत सारे इश्यूज थे जैसे साइबर क्राइम, उसका कोऑर्डिनेशन और जो इंटेलिजेंस की रिपोर्ट्स हैं आतंकवादी हमलों को रोकने के लिए उसको साझा करना, इसके साथ साथ जो क्लाइमेट चेंज की बात आती है और पेरिस समझौता जो था उस पर चाहे वो सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन की बात हो, उस पर काफ़ी विस्तृत चर्चा हुई है। और इस बीच में भारत ने यूएस को धन्यवाद भी दिया है, जो यूएस का सपोर्ट था नेशनल सिक्योरिटी ग्रुप में, जो न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप में, माफ़ कीजिएगा, जो भारत की मेंबरशिप का जहाँ तक सवाल था, उसमें जो सपोर्ट मिला है उसके लिए भारत ने धन्यवाद भी दिया।
बहुत बहुत धन्यवाद आपका, सलमान रावी।
खबर सच है अगर बीबीसी पर है।
ये बीबीसी है, आप दिन भर सुन रहे हैं रेहान फदल के साथ। यूरोपीय आयोग ने आयरलैंड को आदेश दिया है कि वो तकनीक के क्षेत्र की दिग्गज कंपनी एप्पल से 15 अरब डॉलर टैक्स की वसूली करे। 3 साल की गहन जांच के बाद यूरोपीय आयोग ने यह फैसला दिया है कि एप्पल को जो टैक्स नियमों के तहत फायदे मिले थे वो अवैध हैं। हालांकि एप्पल ने इस आदेश पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि यूरोपीय संघ ने आयरलैंड के टैक्स कानूनों की अनदेखी की है। बीबीसी संवाददाताओं की भेजी रिपोर्ट के साथ अमर शर्मा।
यूरोपीय आयोग में प्रतियोगी कानूनों की प्रमुख मार्गरेथ वेस्टागर के मुताबिक आयरलैंड में एप्पल की टैक्स संबंधी जानकारियों की जांच में पाया गया कि कंपनी ने यूरोप में बेचे गए अपने उत्पादों पर 1% से भी कम टैक्स का भुगतान किया था। आमतौर पर यहां 12% से ज्यादा का टैक्स भुगतान करना पड़ता है। यूरोपीय आयोग का कहना है कि यह अवैध तरीके से दी गई सरकारी सहायता है। आयोग के अनुसार एप्पल को बाकी कारोबारी कंपनियों की तुलना में अधिक फायदा मिला। ब्रसेल्स में मार्गरेथ वेस्टागर ने एक न्यूज कॉन्फ्रेंस में कहा कि ईयू के सदस्य देश किसी भी चुनिंदा कंपनी को टैक्स रियायतें नहीं दे सकते।
एप्पल नाउ हैव टू रीपे द बेनिफिट्स वर्थ अप टू 13।
एप्पल को अब 15 अरब डॉलर की राशि के ब्याज के साथ भुगतान करना पड़ेगा। इस फैसले से स्पष्ट संदेश दिया गया है, सदस्य देश चुनिंदा कंपनियों को टैक्स रियायतें नहीं दे सकते, चाहे वो यूरोपीय हों या विदेशी हों, बड़ी हों या छोटी हों, या फिर किसी समूह का हिस्सा हो या नहीं।
यूरोपीय आयोग ने आयरलैंड के मंत्रियों पर एप्पल को स्वीटहार्ट डील देने का आरोप लगाया था, जिसके तहत कंपनी को कई तरह की कर सुविधाएं इसलिए दी गई थी कि वो आयरलैंड में नौकरियां मुहैया करवाएगा। आयरलैंड और एप्पल के मुताबिक दोनों के बीच कोई विशेष डील नहीं हुई थी। आयरलैंड के वित्त मंत्री माइकल नूनान ने कहा कि वो इस फैसले से पूर्ण रूप से असहमत हैं। मार्गरेथ वेस्टागर के मुताबिक आयरलैंड में टैक्स के 2 आदेशों के जरिए 2 दशकों तक एप्पल के टैक्स भुगतान की राशि को अस्वाभाविक तौर पर कम कर दिया गया। यह ईयू के कानून के तहत अवैध है। आयरलैंड में 12.5% कॉरपोरेट टैक्स का प्रावधान है। यूरोपीय आयोग की जांच में पाया गया कि एप्पल ने साल 2003 में यूरोप में अपनी कमाई पर प्रभावी रूप से 1% टैक्स चुकाया और साल 2014 में कर का भुगतान सिर्फ 0.005% था, यानी करीब हर 10 लाख यूरो की कमाई पर कंपनी ने सिर्फ 50 यूरो का टैक्स भरा। मार्गरेथ वेस्टाइगर का कहना है कि प्रबंधकीय व्यवस्था के मुताबिक एप्पल ने मुनाफे को आयरलैंड स्थित मुख्य कार्यालय को आवंटित किया, लेकिन उस कार्यालय में कोई कर्मचारी ही नहीं थे।
हमारे फैसले में ये निष्कर्ष निकलता है कि मुनाफे के बंटवारे का कोई तथ्यात्मक या आर्थिक औचित्य नहीं था। इस तथाकथित मुख्य कार्यालय में कोई कर्मचारी, कोई परिसर नहीं था। यहाँ वास्तव में कोई काम नहीं हो रहा था।
आयरलैंड और एप्पल इस फैसले से सहमत नहीं हैं और वो जल्दी ही इस फैसले के खिलाफ अपील भी करने वाले हैं। आयरलैंड के वित्त मंत्री माइकल नूनान ने कहा कि वो सरकार के कैबिनेट मंत्रियों से इस फैसले के खिलाफ अपील करने को कहेंगे। हालांकि मार्गरेथ वेस्टागर का कहना है कि लग्जमबर्ग में अमेजन और मैकडोनाल्ड के साथ हुई डील की भी ऐसी ही जांच हो रही है।
यूरोपीय आयोग ने एप्पल से 15 अरब डॉलर की वसूली के आदेश दिए।
दिन भर शॉर्टवेव 41, 31 और 25 मीटर बैंड यानी 7,565, 9,460, 9,510 और 11,795 किलोहर्ट्ज़ और मीडियम वेव 1,413 किलोहर्ट्ज़ पर।
आज महान गीतकार शैलेंद्र का जन्मदिन है। अपने 43 साल के छोटे जीवन में लगभग 800 बेहतरीन फिल्मी गीत लिखने वाले शैलेंद्र सिनेमा की दुनिया में हिंदी के सबसे बड़े प्रतिनिधि थे। प्रेमचंद से लेकर मनोहर श्याम जोशी तक हिंदी के न जाने कितने लेखकों और कवियों ने माया नगरी से नाता जोड़ा, लेकिन इनमें से ज्यादातर लोग लंबे समय तक टिक नहीं पाए। लेकिन शैलेंद्र इकलौते ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने गैर फिल्मी साहित्यिक लेखन और फिल्मी नगमों को समान रूप से साधा। इस मौके पर उनके फिल्मी सफर पर हमारे सहयोगी प्रदीप कुमार ने शैलेंद्र की बेटी अमला शैलेंद्र से एक खास बातचीत की है।
छोटी सी ये दुनिया पहचाने राते हैं तुम, कहीं तो मिलोगे कभी तो मिलोगे तो पूछेंगे हाल।
अमला जी, सबसे पहले ये बताइए कि इतने लोकप्रिय गीतकार को अपने पिता के तौर पर देखने का अनुभव कैसा रहा?
हम सच में ये आज तक नहीं समझ पाए हैं, हम बाबा को मिस करते हैं कि हम वो उस गीतकार को मिस करते हैं, क्योंकि दोनों के बीच में वो फासला, वो क्या, हम वो लाइन बना नहीं पा रहे हैं कि बाबा अलग हैं वो गीतकार अलग हैं। कभी वो लाइन याद आती है कि मर के भी किसी को, किसी के आंसुओं में मुस्कुराएंगे, कहेगा फूल हर कली से बार बार, जीना इसी का नाम है। हमारे आंसुओं में मुस्कुराते हैं और हमें तसल्ली देते हैं कि बाबा हैं।
किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है।
उनका बचपन किस तरह का था? ऐसा क्या हुआ कि रेलवे में काम करने वाले शैलेंद्र मुंबई पहुंच गए?
उनको ये तो मालूम था कि पैसे कमाना है, पढ़ाई लिखाई जारी नहीं रख सकते, तो वो एक रेलवे के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में एग्ज़ाम दिया था, मजबूरी में रेलवे की नौकरी ली, अप्रेंटिस बने, झांसी गए, झांसी से फिर बॉम्बे, बॉम्बे में वहाँ पर वर्कशॉप में काम करते थे, फिर काम में तो मन लगता नहीं था। बाबा से अक्सर हमने सुना है, कॉलोनी जो थी हम लोग वहाँ, बाबा हम लोग को ले जाया करते थे, तो वहाँ पर पेड़ के ऊपर चढ़ के बैठे हैं अपनी कविता लिख रहे हैं, तो उनके दोस्त लोग कहते थे कि शंकर यहाँ से उतरो और वापस वर्कशॉप में आओ, तुम्हारी ये लिखाई से तुम्हारी ज़िंदगी नहीं कटेगी, तुम्हारे को नौकरी करनी है, पैसे कमाने, तो वापस आओ वर्कशॉप में। इत्तेफाक से ये हुआ कि लिखाई ही बाबा को आगे लेके आई है।
शैलेंद्र मुंबई आ तो गए लेकिन फिल्मों का सफर बाकी था, वो कैसे शुरू हुआ?
सबको पता है कि बाबा एक कवि सम्मेलन, तो उसमें अपनी कविता सुना रहे थे जलता है पंजाब, और उस कविता को लेकर राज अंकल ने मांगी थी कि वो कविता हमें, वो फिल्म बना रहे थे आग उस समय, तो उन्होंने कहा हमें दे दो, तो बाबा ने साफ इनकार कर दिया कि he didn't want it। और पर जब आर्थिक तंगी आई सामने, पैसों की ज़रूरत थी, तब बाबा राज अंकल के पास वापस गए। राज अंकल तब बरसात बना रहे थे, बरसात लगभग कंप्लीट हो चुकी थी, दो गाने बाकी थे, लास्ट के दो गाने, वो दो पतली कमर है,
पतली कमर है तिरछी नजर है, पतली कमर है तिरछी नजर है, खिले फूल सी तेरी जवानी हुई बताए कहां कसर है।
राज कपूर के साथ उनका साथ अगले 16 सालों तक बना रहा, इस दौरान उन्होंने कई सुपरहिट गीत लिखे। एकदम सहज और सरल अंदाज में उनके लिखे गीतों में आपका पसंदीदा गीत कौन सा है?
बहुत दिया देने वाले ने तुझको, आंचल ही न समाए तो क्या कीजिए, बीत गए जैसे ये दिन रहना, बाकी भी कट जाए दुआ कीजिए।
बहुत दिया देने वाले ने तुझको, बहुत दिया देने वाले ने तुझको, आंचल ही न समाए तो क्या कीजे।
एक तो ये गाना हमसे भूलता नहीं, एक है मेरे सांसों का संगीत थम जाए जब, मेरी आवाज तुझ तक नहीं आए तब, तेरी धड़कन ये नगमा सुलाए तुझे, गीत मेरा सुलाए जगाए तुझे, प्यार के पालने में फ्रॉम सूरत और सीरत तट। वो बात इतनी आसानी से कह गए कि मेरे सांसों
उनके कुछ गीतों की धमक भारत की सीमा के पार भी पहुंची। आवारा हूँ या फिर मेरा जूता है जापानी जैसे गीत तो दुनिया भर में गाए जाते हैं।
सच में अगर कहें कि अगर ग्लोबलाइजेशन हुआ है हिंदी फिल्मों का, हिंदी फिल्म के गानों का, तो बाबा के ये दो तीन गाने हैं, आवारा हूँ और मेरा जूता है जापानी, इट इज़ अनबिलीवेबल। चाइना से प्रेसिडेंट की वाइफ आती है इंडिया, वो गाना गाती है मेरा जूता है जापानी, अजरबैजान के कोई प्रेसिडेंट हैं वो बैठ के गाना गाते हैं। हम रहते हैं दुबई में, हमारे पड़ोस में तुर्कमेनिस्तान फैमिली है, उनके फादर आके हम, योर फादर रोट दिस सॉन्ग, और फिर वो गाना रशियन में गाने लगे, ब्रोद्यागा या कुछ करके, पता नहीं, हमें तो कुछ समझ में नहीं आया। आवारा हूँ,
आवारा हूँ, आवारा हूँ, या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ, आवारा हूँ।
शैलेंद्र की एक पहचान अपने साथी कलाकारों की मदद करने वाले गीतकार की भी रही है।
अगर उनके कोलीग हैं, कोई म्यूजिशियन हैं जिनको पैसों की ज़रूरत है, तो रिकॉर्डिंग स्टूडियो से ही जब पैसे मिलते थे हाथ में, तो वो बांटते हुए चले आते थे घर। अब बटुआ रखा है घर पे और बाबा आके आराम कर रहे हैं, सोने रहे हैं, तो उसमें से आधा मम्मी ने निकाल दिया। सुबह बाबा कह, शकुन इसमें तो कुछ ज़्यादा पैसे होने चाहिए, कभी आदमी हो भूल जाते हो, सबको तो बांट आए हो, क्या पर्स में था, और जो है वो ही है, तो हो गई बात। वो बाबा जानते भी थे। फिर तीसरी कसम के दौरान एक बार जब हम लोग को बाबा बीना जा रहे थे आउटडोर शूटिंग के तहत, तो वहीदा रहमान ने इनकार कर दिया था कि उनके पैसे उनको चाहिए, और उस समय पैसे थे नहीं, देयर वॉज नो मनी। तो बाबा मम्मी बैठे हैं, चिंता कर रहे हैं, और हम बच्चे देख रहे हैं कि कुछ हो रहा है घर में, क्या हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। मम्मी ने कबर्ड खोला और साड़ियों की तह करी हुई साड़ियों की गट्ठी रो के रो के रो के रो आफ्टर रो रखी थी कबर्ड में। तो मम्मी ने एक एक साड़ी उठाई, झाड़ी पर फोल्ड करी, बना ली झाड़ी, उसमें से पता नहीं कितने लाख पैसे निकले। वो जो रिकॉर्डिंग के पैसे, तो वो मम्मी ने बाबा को दिए, फिर शूटिंग पे गए। सो इमेजिन, बाबा ही डिडंट केयर, पैसों की तो कोई चिंता ही नहीं थी उनको। पैसे, ये भी जो लोग कहते हैं ना कि तीसरी कसम फ्लॉप हुई पैसे की वजह से शैलेंद्र जी की डेथ हुई, गलत बात।
आपने तीसरी कसम की बात की, इस फिल्म के बिना तो शैलेंद्र पर कोई बात पूरी नहीं हो पाएगी। क्या ये सच नहीं है कि इस फिल्म की नाकामी से वे टूट गए थे?
बाबा एक भावुक इंसान थे, उनको अगर किसी ने धोखा दिया, अगर किसी ने चीट किया, वो दिल पे लगती थी बात, वो दिल पे जरूर लेते थे, और बोल नहीं पाते थे, वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते थे कि उनको कहें कि हम देख रहे हैं कि आप। और ये सिर्फ बाहर के लोग नहीं थे, ये हमारे घर के लोग थे, हमारे बहुत ही करीब रिश्तेदार थे, सगे संबंधी थे, बाबा के दोस्त थे, मतलब दोस्तों में भी थे, वर्क कोलीग्स भी थे, जिन्होंने, किसने नहीं लूटा बाबा को, किसने नहीं लूटा। हम अगर नाम बोलना शुरू कर दें तो हमको तो सबका नाम गिनवाना पड़े।
दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना रहा।
वैसे ये शैलेंद्र के लिखे गीतों का जादू ही था कि 1963 में साहिर लुधियानवी ने साल का फिल्म फेयर अवार्ड लेने से ये कहते हुए इनकार कर दिया था कि उनसे बेहतर गाना तो शैलेंद्र का है।
बंदनी का गाना था, मत रो माता लाल तेरे बहु तेरे, वो गाना क्या गाना था, वो रोंगटे खड़े हो जाते हैं वो गाना सुनते।
मत रो माता लाल तेरे बहु तेरे, जन्मभूमि के काम आया मैं, बड़े भाग है मेरे।
उर्दू के एक शायर का हिंदी के एक गीतकार के प्रति सम्मान का ऐसा उदाहरण मिल पाना बहुत मुश्किल है। बहरहाल बीबीसी हिंदी से बात करने के लिए अमला जी बहुत बहुत धन्यवाद।
रोता जग में आया, हंसता चला ये बालक तेरा, मत रो माता लाल तेरे बहु तेरे।
मशहूर गीतकार शैलेंद्र की बेटी अमला शैलेंद्र से बात कर रहे थे प्रदीप कुमार। और अब सभा के अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
बीबीसी समाचार। भारत प्रशासित कश्मीर के अलगाववादी नेता सैयद अली शाह गिलानी के बड़े बेटे नईम शाह गिलानी को उनके बैंक खातों के सिलसिले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए ने पूछताछ के लिए बुलाया है। इस बीच नईम गिलानी ने एनआईए के बुलावे पर हैरानी जताते हुए कहा है कि वे तो सियासी आदमी नहीं हैं बल्कि एक डॉक्टर हैं, फिर उन्हें क्यों बुलाया गया है। अमरीका के विदेश मंत्री जॉन कैरी से मुलाकात के बाद भारतीय विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कहा कि दोनों देशों ने रक्षा चरमपंथ को रोकने और साइबर सुरक्षा में सहयोग किया है। उन्होंने कहा कि आतंकवाद अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए अहम चुनौती है और आतंकवाद निरोधक क्षेत्र में बहुत कुछ और करने का स्कोप अभी है। यूरोपीय आयोग ने फैसला दिया है कि आयरलैंड एप्पल से 13 अरब यूरो टैक्स की वसूली करे। 3 साल की गहन जांच के बाद यूरोपीय आयोग ने फैसला दिया है। सोमालिया की राजधानी मोगदिशो के केंद्र में स्थित एक होटल के बाहर एक बम धमाका हुआ। एक प्रत्यक्षदर्शी ने बीबीसी को बताया कि इस हमले में कम से कम 10 लोग मारे गए हैं। जापान के उत्तर पूर्वी तट पर आए तूफान की वजह से लाखों लोगों को अपने घर छोड़ने पड़े हैं। साल 2011 में आई सुनामी से उबर रहे लोगों को अब इस लायन रॉक तूफान से उनका जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बीबीसी समाचार।
दिन भर को यहीं विराम देते हैं। कार्यक्रम आप तक पहुंचाने में मदद की तिलक राज भाटिया ने। रेहान फजल को सभी साथियों के साथ इजाजत दीजिए। नमस्कार।